ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत की लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बन गया है। कल गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन पर उन्होंने कहा कि भारत इस हाइब्रिड और छद्म युद्ध को जड़ से खत्म कर देगा। श्री सिंह ने कहा कि इस संघर्ष विराम का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
श्री सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस कूटनीतिक पहल पर बात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और तीनों सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। नई दिल्ली में कल नए मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत को तीनों सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और सभी सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वामी राम भद्राचार्य और उर्दू कवि तथा गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता है और जागृत करता है।
साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में हमारी स्वाधीनता संग्राम से जन जन को जोड़ने में कवियों और रचनाकारों ने महानायकों की भूमिका निभाई है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.3% जीडीपी वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। ये गति 2026 में भी जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें वृद्धि का अनुमान 6.4% है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है, जिसे UNDESA के नाम से जाना जाता है। रेलवे बोर्ड ने मध्य प्रदेश में करही और सगमा के बीच 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक महत्वपूर्ण नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इससे राज्य में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के तहत प्रस्तावित कार्ड रेल लाइन 5.31 किलोमीटर लंबी होगी। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने तीसरे राउंड में 90.23 मीटर के थ्रो के साथ अपने करियर में पहली बार 90 मीटर की बाधा को तोड़ा। हालांकि जर्मनी के जुलियन वेबर, जिन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 91.06 मीटर का थ्रो किया, चोपड़ा से आगे निकल गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस महीने की 30 तारीख से शुरू होने वाले इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारत ए टीम की घोषणा की है। पुरुष चयन समिति ने अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान और ध्रुव जिरेल को उप कप्तान नियुक्त किया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 एक सप्ताह के अंतराल के बाद आज फिर से शुरू होगा। ये मैच मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।